శ్రీల ప్రభుపాదకి ఇతడి ఘోర ప్రేమ అనండి. జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ, జయ రాధా మాధవ జయ కుంజ బిహారీ, జయ జయ గోపీ జయ మాధవ Ram Hare Ram. భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల బహుపాదికి జగన్ విష్ణుపాద పరమహంస పరిపాలిత సరస్వత శ్రీ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వత ఠాకూర్ మహారాజ్కి నామాచార్య శ్రీ హరిదాస్ ఠాకూర్కి అనంత కోటి వైష్ణవ బృందకి రాధా గిరిధరి భగవానికి జయ జగన్నాథ్ బలదేవ సుభద్రాజీకి సమవేత భక్త బృందకి శ్రీల ప్రభుపాదికి శ్రీతైగోర్ ప్రేమ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తత జయాన్ముదీరయే నష్ట ప్రాయే సుభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతీ ఉత్తమా శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టకీ. శ్రీమద్భాగవతం 12th అధ్యాయ శ్లోక 19 పఢ్ంగే ఇస్కే పెహ్లే 18 కా పఢ్ంగే. గో భూత్వా శ్రీముఖి ఖిన్న క్రనంతి కరుణం విభో ఉపస్థితాన్ సింకే తస్మే వ్యసనం సమపోచ్యత. అనువాద ఈ శ్లోకో కా మాతా పృథివీనే గాయ కా రూప ధారణ కియా वो अत्यंत दुखी हरी अपनी आँखों में आंसू भरकर भगवान ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुई और उसने उनसे अपनी विपदा कह सुनाई. आज के श्लोक ब्रह्मा तत्पधार्यर्थ బ్రహ్మా తత్పధార్యథ సహ దేవేతయా సహ సహ దేవేతయా సహ జగమాస త్రినయన తీరం క్షీరపయ నిధే బ్రహ్మాతయ పధార్యథ సదేవేతయా సహ జగమాస త్రినయన తీరం క్షీరపయ నిధే బ్రహ్మా తదుపధార్యథ సదేవేతయ సహ జగమాస త్రినయన క్షీరం క్షీరపయ నిధే
Thank you.
ब्रह्मांड कृप धर्यथ का शब्दार्थ ऐसे हैं ब्रह्मा तत् पधार्य। हर बात को ठीक से समझकर अथ पश्चात श्री राधा गिरिहरि भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की श्री प्रभुपाद की। सह सात देवे देवताओं के, तया सह माता पृथ्वी के साथ, जगाम निकट गए, सत्रिनयन तीनों नेत्रों वाले शिव जी के साथ, तीरम तट पर, खीरपय निधे खीर सागर के। अनुवाद और तात्पर्य जी के द्वारा। माता पृथ्वी की विपदा सुनकर भगवान ब्रह्मा जी, माता पृथ्वी तथा भगवान शिव जी एवं अन्य समस्त देवताओं के साथ दुग्ध सागर के तट पर जा पहुंचे। तात्पर्य, जब भगवान ब्रह्मा जी पृथ्वी के संकटमय स्थिति को समझ गए तो सबसे पहले वो इस ब्रह्मांड के विविध कार्यों का भार संभालने वाले भगवान इंद्र तथा संहार के लिए उत्तरदायी भगवान शिव जी के पास गए। सृजन और संहार कार्य भगवान के आदेश अनुसार निरंतर चलता रहता है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, परित्राण साधुन विनाश ऐसा दुष्कृतम। जो लोग ईश्वर के नियम का पालन करने वाले हैं उनकी रक्षा विभिन्न सेवकों तथा देवताओं द्वारा की जाती है, किंतु जो अवांछित है भगवान शिव जी उनका संहार कर देते हैं। सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा जी भगवान शिव समेत सारे देवताओं से मिले, तब माता पृथ्वी को साथ लेकर वो खीर सागर के किनारे गए, जहाँ विष्णु भगवान चित्रदीप में शयन करते हैं। ओम ज्ञान अतिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथ नितं संसजीवं साधयितं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्रीसाधानितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते दत्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। सभागवत के दशम स्कंद परीक्षित महाराज का अभिशप्त जीवन को लेकर प्रकट हुआ। भागवत का प्रकाश परीक्षित महाराज का अभिशप्त जीवन को लेकर के हुआ और परीक्षित महाराज इतने अधिक काफ़ी शुद्ध भक्त थे तो श्रील सुखदेव गोस्वामी जी तो सीधे उनको भागवत की जो दशम स्कंद है तो सुना सकते थे, किंतु ये नहीं किए। श्रील सुखदेव गोस्वामी ये नहीं करके तो किए कि बद्ध जीव का हृदय से दोष को दूर करके भगवान के लीला कथा सुना करके उनको कृष्ण प्रेम का योग्य बनाने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी अपने आश्रित को भागवत के शुरुआत से प्रथम स्कंद से शुरू किए। वो भागवत की जो लीला दशम स्कंद परीक्षित महाराज सुनने के लिए योग्य थे, लेकिन कलयुग में बद्ध जीव का हृदय के शुद्धिकरण के लिए ये करना पड़ा। और कलयुग में बद्ध जीव इतने हद तक बद्ध है जब भागवत के जो दशम स्कंद का कृष्ण का सारे लीलाओं है और सारे लीलाओं में से जो भगवान श्री कृष्ण के सर्वोत्तम लीला रास लीला इसीलिए नहीं कहा गया कि बद्ध जीव है और कलयुग में तो इसलिए नहीं कहा गया। हालांकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में राधारणी का कृष्ण के प्रति जो उत्कट भाव व्यक्त किए यदि गौर न हो तो राधा क्या है तब के हो तो राधार महिमा राधार महिमा प्रेम रस सीमा। तो ये जो है तो राधा का महिमा को ये जगत को बताने के लिए जब तक हमें ब्रजवासियों का चरण कमल का अनुसरण नहीं करते तब तक ब्रज प्रवेश हमारा द्वारा नहीं होता, हम नहीं कर पाएंगे। ब्रजवासियों के चरण कमल का जब हम अनुसरण करेंगे तब जाके हमें ब्रज में प्रवेश कर सकते हैं। इसी बात को बताने के लिए चैतन्य महाप्रभु राधा रानी जो है कि ब्रज के सबसे बड़ी उत्कृष्ट ब्रजंगना तो उनके भाव कृष्ण के प्रति किस प्रकार का रखी थी वही बात को बताने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए संसार के विचार। इसलिए चैतन्य चरितामृत सबके लिए नहीं है क्योंकि कि चैतन्य चरितामृत में राधा रानी का कृष्णदास कविराज गोस्वामी राधा रानी का जो भगवान के प्रति मान अभिमान अनुराग ये साधारण जीव के सामने काम वासना खड़ी कर सकती है। और आज के तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक ही शब्द को कल भी आप लोग सुने होंगे तो आज भी वही बात को दोहराए तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि परित्राणाय साधुना। भगवान श्री कृष्ण हर युग में इस संसार में प्रकट होते हैं अपने भक्तों को कष्टों से बचा करके आनंद प्रदान करने के लिए। भगवान प्रयास करते हैं हर समय अपने भक्तों को आनंद देने के लिए और भक्त भी यही फेर में रहता है मैं कैसे भगवान को आनंद कृष्ण को आनंद दूं। ये भगवान और भक्तों के भीतर एक स्पर्धा आनंद देने की स्पर्धा ये होर लगा रहता है भक्त और भगवान के भीतर ये के लगा रहता है मैं कैसे उसको सुखी करूँ। और वो भक्त सोचता है कृष्ण को कैसे सुखी करूँ और कृष्ण सोचते हैं मैं मेरा भक्त को कैसे सुखी करूँ। ये दोनों के भीतर ये चलती है, यही वास्तविक भक्ति है। जब हमें दूसरे के हित के विषय में सोचते हैं दूसरे के कल्याण के विषय में सोचते हैं कि दूसरे भक्त का मन भगवान में लगे रहें कि भगवत धाम जाएं, यही वास्तविक भक्ति है। और दूसरे को देख के ये और उनका जो विपरीत भाव, ये भक्ति का विनाश का मार्ग है, तो ये भक्ति नहीं है। तो द्वापर के और वैष्णव इतने बढ़े चढ़े होते हैं, वो तो ऐसा भाव आता नहीं है। वैष्णव इतने भक्ति में, इतने अवस्था में, उसी अवस्था में पहुंचता है, तो किसी के अपराध की वो लेता ही, मन में लेता नहीं है। हालांकि यदि वो कृष्ण उनका अलग व्यवहार दिखाते हैं, भक्तों के मन में ऐसा नहीं आता है। तो द्वापर आज के जो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि परित्राण साधुना भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को, और यही बात भी कुंती महारानी भगवान के चरण कमल में स्तुति करती है, क्या भक्ति योग विधान अर्थ है, प्रभु कथ्यम पश्यम ही स्त्री, मैं एक स्त्री हूँ, कैसे आपका ये संसार का प्रकट लीला को मैं समझ पाऊंगी। आपका भक्तों के हृदय में आनंद, भक्ति का बीज को बो करके उनको अपने दर्शन सुख आनंद, आपका दर्शन का जो आनंद, आपको दर्शन करने मात्र से जिसको आनंद जीव अनुभव करता है, ये आनंद को प्रदान करने के लिए आप भक्ति योग विधान अर्थ है, ये अर्थ है, इसीलिए आप ये संसार में प्रकट। ये कुंती महारानी का एक बहुत बड़ी स्तुति है, कहना उनका प्रार्थना है, सही बात है। भगवान अपने धाम में बैठकर वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों के लिए वो चल पड़ते हैं, अपने भक्तों को दर्शन देकर के उनको आनंद सुख देने के लिए संसार में प्रकट होते हैं। और सही बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वापर में वो लीला कर रहे थे, और राधा रानी ने भी सोच रही थी कैसे मैं हमेशा कृष्ण को आनंद प्रदान करूं। अपने राधा कृष्ण लीला में आप देखे होंगे, हमेशा राधा रानी अपने कुंज को सजा करके तो कृष्ण की अपेक्षा करती रहती है, और भगवान श्री कृष्ण कभी कभी ऐसा करते हैं राधा रानी को मान देने के लिए, कि राधा रानी बहुत बड़े मान करते हैं, कृष्ण का दर्शन जब नहीं मिलता है तो कृष्ण जब थोड़े से इधर उधर कर देते हैं तो राधा रानी को बहुत बड़ा मान हो जाती है, और ये मान को टूटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को क्या क्या करना पड़ता है। तो ये ऐसे आप जानते हैं, ये संसार के भीतर अनगिनित भगवान के भक्त है, अनगिनित है, अरे अनगिनित तो भक्तों में से 16108 जो है भगवान के श्रेष्ठ भक्त है, फिर ये 16108 में से 108 श्रेष्ठ है, फिर 108 में से 8 श्रेष्ठ है, फिर 8 में से 2 है, ये 8 जो है 16108 जो है आप जानते हैं, फिर 108 आप जानते हैं, जो 8 जो है ये सखियां है, द्वारका पाट मैसी है, फिर ये में से 2 श्रेष्ठ है, राधा रानी और चंद्रावली, और ये 2 में से 1 श्रेष्ठ है राधा रानी। तो कभी कभी भगवान श्री कृष्ण ऐसे करते हैं राधा रानी का, क्योंकि जो प्रेमी और प्रेमिका होते हैं तो कभी कभी वो अपने वो थोड़ा ऐसे उसकाते हैं तो, और संबंध को मिठास बनाने के लिए, तो श्री कृष्ण भी ऐसे ही करते हैं कभी कभी, वो जानबूझकर चंद्रावली के पास चले जाते हैं। और एक बार राधा रानी अपने कुंज को तैयार करके भगवान श्री कृष्ण की अपेक्षा कर रही थी, और कृष्ण आ नहीं रहे थे, और कृष्ण की एक मुहूर्त विलंब राधा रानी के लिए बड़ी असह्य हो रही थी, तो वो बोल दी अपने जो सहेली थी, सखी थी, तो वो कही जाओ कृष्ण अभी तक यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, तो जाओ आप कृष्ण कहाँ है आप ढूंढ ले आओ। तो ये राधा रानी का ये आदेश को लेकर के जब उनके कोई एक सहेली सखी तो कृष्ण की खोज में जा रही थी तो चंद्रावली की एक सखी थी वो रास्ता में आ रही थी, वो कह पड़ी कि आपका कृष्ण तो हमारे चंद्रावली के कुंज में है। और ये सुन करके वो आकर के बता दी राधा रानी को, जैसे सुने राधा रानी जैसे सुनी कि कृष्ण अभी चंद्रावली के पास है तो तुरंत उनका मान होती है। हाँ, और गेट में कुंज के जो गेट है तो गेट में जो ललिता और विशाखा हमेशा खड़ी रहती है द्वारपाल के जैसे, तो राधा रानी तुरंत बोल दी कि देखो ये लंपट व्यक्ति जैसे आएगा उनको उनके भीतर छोड़ना नहीं, और मुझे उनको उनके साथ मेरा कोई बात करना नहीं है, और मुझे मिलना नहीं है, उनको देखना नहीं है, उनके साथ बात नहीं करना। इसी प्रकार राधा रानी का मान धीरे धीरे उठती है, ऊपर चलती है, बढ़ती है, और इस प्रकार मान करके वो कुंज के भीतर इतने कृष्ण के बिना वो रोती है, और जो जगह में रोती है वो एकदम कीचड़ बन जाती है, उनके आंखों से राधा रानी के कृष्ण के बिना राधा रानी के आंखों से इतने आंसू बहती है तो वो जगह एकदम कीचड़ बन जाती है। तो इस प्रकार का दशा राधा रानी का जब कृष्ण को पता चल जाता है तो तुरंत चंद्रावली को छोड़कर दौड़ दौड़ भाग भागे आते हैं और आकर के हाँ सीधा वो जो कुंज है उनके प्रवेश करने के लिए जो प्रयास करते हैं तो दोनों द्वार जो खड़े थे ललिता और विशाखा रोक देती है। और ललिता थोड़ा शांत स्वभाव के होते हैं लेकिन विशाखा जो है तो राधा रानी का थोड़ा सा भी खर्च को सहन नहीं कर पाते हैं तो तुरंत कह पड़े तुम एक लंपट हो ऐसे 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 कई कई बातें सुना दी। हाँ और ये सुन करके श्री कृष्ण एकदम खिन्न हो जाते हैं तो और मेरा गलती हो गई, कान पकड़ते हैं, नाक पकड़ते हैं, उनका पैर पकड़ते हैं, सब पकड़ते हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनते नहीं है। और लेकिन ललिता और विशाखा अंदर जाने नहीं दिए तो वहाँ पर श्री कृष्ण दुखी होकर के चले जाते हैं। जाकर के जो यमुना है ये यमुना के रति के ऊपर बालू के ऊपर वो उलट पलट होते हैं, गिरते हैं। हाँ राधा रानी के विरह में गिरते हैं। और जब गिर रहे थे तो उस समय जो क्या ये वृंदे देवी को पता चलती है तो वृंदे देवी तुलसी महाराज वृंदे देवी आते हैं वन के सामने आ करके कृष्ण का इस प्रकार का रोना धोना को देखकर वो कहते हैं क्या हुआ आपका इस प्रकार का क्यों है तो सारे दुखों को बताते हैं श्री कृष्ण बताते हैं। तो वहाँ पर तुलसी महारानी कहती है कि मेरा एक सुझाव है, मेरा एक कहना है, जो सुनोगे तो ये समस्या का समाधान हो सकती है, राधा रानी के साथ मिल सकते हो। हाँ तो ये सुन करके श्री कृष्ण कहते हैं आप जो भी करने के लिए कहोगे मैं तैयार हूँ लेकिन मुझे राधा रानी के साथ मिला दो। तो वहाँ पर तुलसी महारानी श्री कृष्ण को बोलते हैं कि जाओ पहले आप जो ये पीताम्बर पहन रखे हो उनको निकाल दो, एक गेरुआ वस्त्र पहन लो और आपका जो ये लुचकुच बाल है तो उसको टकले हो जाओ, उसको काट दो और हाथ में जो बांसुरी लिए हो तो उसको छोड़ दो, एक डंडा पकड़ लो। तो तुलसी महाराज के इस प्रकार कहने से तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं ना अपने पीताम्बर को छोड़कर एक गेरुआ वस्त्र पहन लेते हैं और हाँ टकले हो जाते हैं और हाथ में एक लाठी पकड़ लेते हैं। ये अवस्था में जब आते हैं तो तुलसी महारानी वहां पर उनको एक पात्र पकड़ा देती है तो पकड़ा करके बोलते हैं एक भजन सिखा देती है कि जाओ राधा रानी का विरह का भजन। तो ये भजन को राधा रानी का कुंज के सामने जाकर के गाओ। तो ये सन्यासी महाशय इस प्रकार का सन्यासी वेश बन करके तो जाते हैं और राधा रानी के कुंज के सामने वो गीत को गाते हैं और राधा रानी के विरह का गीत। जब ये गीत को ललिता और विशाखा सुनती है तो दौड़ दौड़ आती है आकर के वो श्री कृष्ण को पूछते हैं आप कौन हो, वो सन्यासी महाशय आप कौन हो, हाँ इस प्रकार का विरह गीत हमारे इस प्रकार विरह गीत आप कहाँ से सीखे, हाँ इस प्रकार का पूछती है ललिता और विशाखा। लेकिन सन्यासी महाशय एक एक्टिंग करते हैं, स्त्रियों की तरह देखते नहीं है लेकिन है स्त्रियों का चक्कर लेकिन वो एक्टिंग करते हैं वहां पर वो देखते नहीं है, ऐसे वो एकदम संसार में सबसे बड़े विरक्त पुरुष का अभिनय करते हैं। तो इस प्रकार का विरक्त पुरुष को देख करके हाँ तो ललिता जी सोचते हैं कि ये हमारा राधा रानी का समस्या को सुलझा सकते हैं। तो धीरे धीरे आते हैं ललिता जी आकर के पूछते हैं कृष्ण को क्या आप हमारे जो सखी है राधा रानी उनका दुख दूर कर सकते हो, क्या आप कृष्ण के साथ उनको मिला सकते हो। तो वहां पर बहुत कहने के बाद तो श्री कृष्ण बोलते हैं ठीक है मुझे लेके चलो, आपका सखी कहाँ है मुझे दिखाओ, तो देखने के बाद मैं कुछ उनका उपाय बताऊंगा। ललिता और विशाखा दोनों राधा रानी को लेना कृष्ण को लेकर राधा रानी के कुंज के पास जाते हैं और कुंज के जो बाहर है आंगन है तो वहां पर बैठा देते हैं। अब बिठाने के बाद तो विशाखा जाती है अंदर जाती है और राधा रानी के मुंह में इतने तक एक कपड़ा घोड़ा ढंग करके वो बाहर लेकर के आती है और कृष्ण के सन्यासी महाशय के सामने बिठा देती है। जब सन्यासी महाशय के सामने बिठा देते हैं और विशाखा ने राधा रानी के हाथ को निकाल करके कपड़े से वो दिखाते हैं, वो सन्यासी महाशय हमारे सखी के हाथ को दिखा देख करके उनको बताओ कृष्ण अभी उनको कब मिलेंगे। तो ये सुनकर के सन्यासी महाशय जी कहते हैं अरे 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 राम 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 राम, मैं एक दंडी सन्यासी हूँ, मैं कोई स्त्रियों का हाथ स्पर्श नहीं करता, हाँ मैं कैसे आपका इस आपका सखी का हाथ स्पर्श करूंगा, तो ये मना कर देते हैं। तो फिर वहां पर विशाखा पूछती है कृष्ण को तो फिर आप कैसे बताओगे कि हमारे सखी को क्या क्या कब कृष्ण मिलेंगे करके। तो वहां पर सन्यासी जी कहते हैं कि आपका सखी जो ये मुंह में कपड़े ढक करके बैठे हैं, तो उनका मुंह से कपड़े को निकाल दो, तो हम उनके कपाल जो सर के जो कपाल है ये कपाल को देख करके मैं बता दूंगा कृष्ण उनको कब मिलेंगे। तो ये सुन करके विशाखा और ललिता राधा रानी का मुंह से वो कपड़ा को उठा देते हैं। जैसे उठा देते हैं तो ये जो सन्यासी महाशय है वो तुरंत उनका सन्यासी का रूप गायब हो जाता है। तुरंत तो त्रिभंग ललिता जो श्याम सुंदर रूप है वो प्रकट हो जाता है। वो पीताम्बर पहन करके हाथ में बांसुरी लेकर के उनके जो मर पूंछ है वो सारे लेकर के राधा रानी के सामने प्रकट हो जाते हैं। और जैसे राधा रानी ये सन्यासी जो का सन्यासी महाशय का ये श्याम सुंदर रूप को दर्शन करते हैं, तुरंत तो उनका जो मान वो दूर हो जाते हैं। तो ये है भगवान संसार में प्रकट होते हैं हर युग में अपने भक्तों को खास करके आनंद प्रदान करने के लिए। ये आनंद देने के लिए भगवान ऐसे तो असुरों को कभी भी मार सकते हैं, कैसे भी मार सकते हैं, लेकिन खास करके भक्तों को आनंद देने के लिए इस संसार में हर युग में वो आते हैं। और ब्रज लीला में आप लोग जानते हैं नंद बाबा एक वैश्य थे। अवैश्य होने के नाते उनका कार्य था गोरक्षा और कृषि। एक बार नंद बाबा भांडीर वन में प्रवेश किए गया गाय को लेकर के, तो प्रवेश करते ही बहुत जोर से आंधी तूफान आने चलने लगी। और वो समय नंद बाबा अपने में छोटे बालक को ले रखे थे और इतनी जोर आंधी चल रही थी, अपने बचाव तो जो भी वो कैसे कर सके, लेकिन अपने बालक शिशु के विषय में सोच करके वो बड़े डर गए किस प्रकार इस शिशु का बालक का कैसे किस प्रकार का रक्षा हो सकती है। और डर के तुरंत भगवान को स्मरण किए। जैसे स्मरण की अचानक एक अद्भुत ज्योति उनके सामने प्रकट हुआ। वो ज्योति से राधा रानी प्रकट हुए और राधा रानी प्रकट होकर के नंद बाबा से वो बालक जो कृष्ण थे उनको ले लिए और अपने गोद में लेते ही तुरंत राधा रानी के भीतर माधुर्य भाव का प्रकट हुआ। और जैसे ये भाव प्रकट हुआ राधा रानी के भीतर, तुरंत वो सोचने लगे ये बालक यदि अभी किशोर होते हैं, श्याम सुंदर होते हैं, तो मैं लेकर के रास करता। जैसे राधा रानी के मन के भीतर ये भाव प्रकट उत्पन्न हुई, तुरंत भगवान श्री कृष्ण जो बालक थे तुरंत वो ये हो गए श्याम सुंदर रूप ले लिए। और सब दैवी योग से ये क्या है तुलसी महारानी माया देवी और कौन है थे? योग माया, सॉरी योग माया के आदेश से तुरंत वहां पर रास प्रकट हो गया। दो सुंदर रत्न सिंहासन वहां पर रह गया, तो सारे व्यवस्था हो गया। तो ये सब योग माया के आदेश से ये सब राधा कृष्ण का लीला करने के लिए सारे प्रस्तुत हो गया। और राधा कृष्ण जाकर के रत्न सिंहासन के ऊपर बैठ गए। जैसे ही बैठ गए अचानक ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक से वहां पर पधारे। अब वहां पर प्रकट होकर के तो पहले वहां पर राधा कृष्ण का विवाह किए। यदि वो लोक दृष्टि में देखा गया चंद्रसेन के साथ राधा रानी का विवाह हुआ था, लेकिन उसके पहले ब्रह्मा जी के द्वारा राधा रानी का कृष्ण के साथ विवाह हुआ था। क्योंकि ये जो चंद्रसेन थे, मैं अभी एक बार बताया था, एक ब्राह्मण था। और ये ब्राह्मण हर जन्म में तपस्या कर रहा था भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी को अपने पत्नी के रूप में पाने के लिए, लेकिन भगवान उनको नकार रहे थे। लेकिन आखिर में वो चिढ़ करके तो भगवान श्री कृष्ण उनको पत्नी के रूप में राधा रानी को दे तो दिए, लेकिन देने के साथ साथ भी वो बता दिए तो राधा रानी तो आपको पत्नी के रूप में मिलेंगे, लेकिन आप एक नमपुंसक बनोगे, पुरुषत्वहीन हो जाओगे। इस प्रकार का भी बता दिए थे भगवान श्री कृष्ण। और ये राधा का इस प्रकार ब्रह्मा के द्वारा विवाह हुआ। तो इस प्रकार हमें देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अब खास करके एक ही चीज के लिए इस संसार में आते हैं। और आज के तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी यही बात को दोहराते हैं। दोहराते हैं कि जब संसार में पृथ्वी के ऊपर असुरों की भार बढ़ जाती है और असुरों के उत्पात से पृथ्वी अथय हो जाती है, वो गाय के रूप लेकर आज प्रभुपाद जी तात्पर्य है ना, आज के श्लोकों में श्री सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि संसार में जब असुरों के संसार में असुरों के द्वारा जब उत्पाद बढ़ जाती है तो पृथ्वी असह्य हो जाती है, तो फिर वो गाय के रूप लेकर के भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचते। आप लोग सुने होंगे पहले जो हिरण्याक्ष था, हिरण्यकशिप के भाई, वो इतने बड़े राक्षस था तो पृथ्वी को चुरा लिया था, लेकर रसातल में रख दिया था। हाँ, आज अब ब्रह्मा जी देखें कि पृथ्वी कहाँ चली गई, पृथ्वी कहाँ चली गई। जब उनको ध्यान योग के द्वारा पता चला कि हिरण्याक्ष के द्वारा पृथ्वी चुरा गई और अभी पृथ्वी रसातल में है, तो फिर वो भगवान के पास जाकर प्रार्थना किए, अरे भगवान बराहदेव के रूप में प्रकट होकर हो गए और जाकर के सीधा वो पृथ्वी को उठा अपने सिंह में उठा करके लेके आ रहे थे। आज अब हिरण्याक्ष को पता चला कि मेरा प्रॉपर्टी को ये एक सुअर आकर के मेरा इलाका में मेरे संपत्ति को लेके जा रहा है, वो कूद पड़ा और दौड़ा भागा और भागते भागते आकर के भगवान बराहदेव के पास पहुंचा और कहने लगा, अरे तुम जंगल में रहने वाला पशु हो, इधर किधर आ गया। तो ये बोल करके अपना गदा उठ छोड़ा और भगवान बराहदेव वहां पर उनको बध कर देते हैं और पृथ्वी को लेकर आते हैं। और ऐसे भगवान बताते हैं, खुद ही बताते हैं कि पृथ्वी इतने भाग्यवती है। हाँ, ये पृथ्वी के ऊपर वृंदावन धाम है, गंगा यमुना बह रही है। और जो भगवान गोलक ऐसे कि अपने प्रिय धाम गोलक वृंदावन में जो लीला नहीं करते हैं, वो लीला को पृथ्वी के ऊपर आके करते हैं। क्योंकि गोलक वृंदावन में भगवान हमेशा किशोर अवस्था में रहते हैं, नव यौवन के अवस्था में रहते हैं वहां पर। हाँ, हमेशा भगवान किशोर अवस्था में रहते हैं, लेकिन भगवान जब धरती पर प्रकट होते हैं, पृथ्वी के ऊपर आते हैं, तो बचपन की लीला करते हैं, बाल लीला करते हैं। और ये खास करके बाल लीला ये पृथ्वी के ऊपर होती है, गोलक वृंदावन में भी नहीं होती है। हाँ, ये पृथ्वी इसीलिए भाग्यवान है। हाँ, आर्य पृथ्वी के ऊपर जगन्नाथपुरी है, कालिया है, तो आर ये सब भगवान हर समय इस संसार में प्रकट होते हैं, ये पृथ्वी का भार को भी हरण करने के लिए। और पृथ्वी जब दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंची, गाय का रूप लेकर रो रही थी और ब्रह्मा जी को प्रार्थना की, तो ब्रह्मा जी सारे देवताओं के साथ क्षीरसागर के तट पर जाके पहुंचते हैं। और क्षीरसागर तट पर पहुंच करके एक मंत्र होती है, वो देवताओं को पता होता है, वो मंत्र है पुरुष सूक्त मंत्र के द्वारा भगवान क्षीरोदक साई विष्णु को प्रसन्न करते हैं। कि भगवान इतने आनंद में रहते हैं, यदि तीन पुरुष अवतार ये धोती जगत का देखभाल करते हैं, लेकिन क्षीरोदक साई भी हमेशा अनंत तक लेटे रहते हैं योग निद्रा में, वो हमेशा ऐसे ही पड़े रहते हैं। हाँ, तो ब्रह्मा जी और जब धरती पर उत्पात होती है असुरों के द्वारा, तो पृथ्वी के साथ सारे देवताएं और ब्रह्मा जी एक क्षीर सागर के तट किनारे पर पहुंचते हैं और वहां पर पहुंच के ब्रह्मा जी ये मंत्र को उच्चारण करते हैं। और ये मंत्र जब उच्चारित होती है तब भगवान अपने योग निद्रा से जागृत होते हैं, उठते हैं और उठ करके देखते हैं कि पृथ्वी के ऊपर क्या हो रही है। तो फिर वो ब्रह्मा के हृदय में वो मैसेज भेजते हैं वहां पर। ऐसा नहीं, ये तो किनारे पे ये सब वो वहां तक जा नहीं पाते हैं, ये सारे ब्रह्मा जी देवताओं पृथ्वी वो तट पर खड़े रहते हैं, तट पर रह करके वो प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी वहां पर प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना क्षीरसागर के अनेक अंदर अनेक भीतर वो जो भगवान रहते हैं वहां पर वो पहुंचता है और वहां से भगवान ब्रह्मा जी के हृदय के भीतर एक मैसेज भेजते हैं। और जब ब्रह्मा जी वहां पर ध्यान में बैठते हैं और ये मैसेज जब ब्रह्मा जी के हृदय के भीतर आती है, तो फिर ब्रह्मा जी ये मैसेज को, ये खबर को, संदेश को सारे देवताओं को बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण अभी आएंगे, सारे देवता लोग अभी आप गोप बन जाओ और सारे जो ये देवताओं की पत्नियां तो आप तो गोपी बन जाओ। तो फिर भगवान ब्रह्मा जी आगे ये बात को बढ़ाते हैं। तो ये और आज के इस श्लोक में और एक प्रभुपाद जी ये बात को बताते हैं कि मैं अभी बताया, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां। परित्राणाय साधुनां, भगवान कलिजुग में साधुओं को आनंद देने के लिए अर्चा के रूप में प्रकट होते हैं। अर्चा विग्रह के रूप में भगवान प्रकट होकर के अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। तो आप लोग सुने होंगे चैतन्य लीला में एक बार चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु सती माता के घर में ऐसे कुछ कर रहे थे, लीला कर रहे थे, तो अचानक सती माता आई और भगवान विश्वंभर को, चैतन्य महाप्रभु को बोली, बेटा देखो आज एक मैं अद्भुत स्वप्न देखा। क्या ये स्वप्न? जब विश्वंभर जी पूछे कि क्या आपने क्या ये स्वप्न देखा, तो जाके सती माता चैतन्य महाप्रभु को ये स्वप्न के विषय में सुनाते हैं कि देखो बेटा मैं सोया था और हमारे घर में जो डीटी है कृष्ण बलराम जो विग्रह है, ये विग्रह के कमरे ठाकुर के घर में आप दोनों नित्यानंद और आप दोनों अंदर गए, और अंदर जाकर के नित्यानंद अपने उनके हाथ में कृष्ण का विग्रह पकड़ा है, पकड़ रखा है, और आप आपके हाथ में बलराम का विग्रह को पकड़ रखे हो, और इस प्रकार पकड़ करके आप ठाकुर जी के घर से बाहर आए। आप बाहर आकर के मैं देखा स्वप्न में आप चारों इस प्रकार का झगड़ रहे थे और आप दोनों 5 साल के बालक हो गए थे, इस पर बड़े नहीं थे आप दोनों, लेकिन आप दोनों 5 साल के बालक थे और अपने अपने हाथों में कृष्ण बलराम के विग्रह को पकड़ रखे थे, और मैं स्वप्न में देखा आप चारों बहुत जोर से झगड़ रखे थे। और ये झगड़े में कृष्ण बलराम विग्रह आप दोनों को कह रहे थे कि अभी ये घर में जो भी माखन है, दूध है, ये सब हमारे हैं। तो जैसे बलराम जी कहने लगे तो तुरंत नित्यानंद ने कह दिए कि अभी ग्वालों का राज जमाना गया, अभी हमारा है, अभी आप चले जाओ नहीं तो नतीजा बहुत खराब होने वाली है। ये सुन करके जो बलराम भी था वो एकदम क्रोध में आ गया। तो क्रोध में आकर के बोला, तुम जानते नित्यानंद को, बलराम विग्रह नित्यानंद विग्रह नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं कि आप जानते नहीं हो मेरे प्रभु कौन है। मैं श्री कृष्ण के चरण में शपथ करके कहता हूँ तो आप दोनों को बहुत कष्ट भोगाऊंगा दूंगा। तो ये जब बलराम विग्रह नित्यानंद प्रभु को कहते हैं तो नित्यानंद प्रभु बलराम विग्रह को कहते हैं, आप नहीं जानते हो मेरे प्रभु कौन है, मेरे प्रभु विश्वंभर गौर सुंदर है। इस प्रकार का कह करके झगड़ करके वो चारों को चारों जो भी प्रसाद भोग था वो सब अपने छीना छपटा होकर के खा रहे थे। इस प्रकार का स्वप्न सती माता देख रही है, और इसी समय में नित्यानंद प्रभु आगे जाकर करके सती माता को कहते हैं कि वो माँ मुझे बहुत भूख लग गई है, तो आप मुझे कुछ खाने के लिए दो। तो ये फिर जैसे नित्यानंद इस प्रकार कहते हैं सती माता को, तुरंत वहां पर सती माता का नींद खुल जाती है। तो ये सारे स्वप्न का वृत्तांत को सुनाने के बाद विश्वंभर जी चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि माँ आपने जो स्वप्न देखा तो सत्य है, मैंने कई बार आपका बहू को संदेह किया कि ये ठाकुर जी के घर में प्लेट भर करके लेके जाती है, लेकिन जब घर से निकलती है वो प्लेट खाली है, तो मैं तो आपके बहू के ऊपर संदेह कर रहा था, लेकिन सच में आपके घर में जो विग्रह है ये परम पुरुषोत्तम भगवान है, वो सारे के सारे खा जाते हैं। तो अभी आपका स्वप्न का बात को सुनकर मेरे संदेह मोचन हुआ, संदेह में मैं ठीक हुआ, मैं संदेह से मुक्त हुआ। इस प्रकार भगवान ये कलि युग में अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों की आनंद को बढ़ाते हैं, और भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधुनं विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। जब अधर्म बढ़ जाती है और संसार में पाप धर्म नष्ट हो जाती है, तो वो समय मैं संसार में प्रकट होकर धर्म को स्थापन करता हूँ। और यही बात भी हमें देखते हैं चैतन्य लीला में जगाई माधाई के जीवन में। भगवान चैतन्य महाप्रभु, जब चैतन्य महाप्रभु का आदेश था नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को कि जाओ 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 नित्यानंद, जाओ हरिदास, सर्वत्र हमारा आज्ञा करो प्रकाश, प्रति घरे घरे जाओ करो ये भिक्षा, बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, हे नित्यानंद हे हरिदास, आप जाओ प्रत्येक घर के दरवाजे में खड़े हो जाओ और उनको विनती करो कि कृष्ण राम बोलो। इस प्रकार हर घर के पास, घर गृहस्थ के पास जाकर के हर गृहस्थ को विनय करो। और चैतन्य महाप्रभु का ये आदेश लेकर, क्योंकि आज एक महान आचार्य शक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो कि चैतन्य महाप्रभु के जो अद्भुत छुपी हुई गुह्य रस को ये सारा संसार के कोने कोने, जो लोग योग्य नहीं है, जो कृष्ण प्रेम के लिए हकदार नहीं है, उनके कोई औकात नहीं है, ऐसे कृष्ण प्रेम, ऐसे चैतन्य रस को हर जीव के हाथ में पहुंचाने के लिए ये सिंह गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज अपने पिता का आदेश लेकर अनेक प्रयास किए थे। तो चैतन्य महाप्रभु का ये जो नव संजीवनी जो रस है, क्योंकि ये संसार में भौतिक जीवन मतलब एक प्रकार मृत जीवन है, ये मृत जीवन को अमरता प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु का आदेश को नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर हर व्यक्ति के पास पहुंचते थे और उनके विनती करते थे, बोल रामो बोल कृष्ण, इस प्रकार जो विनती करते थे तो उनको जो सज्जन व्यक्ति होते थे तो उनका ये कहना को सुनते थे, और जो लोग नास्तिक स्वभाव से होते थे वो खदेड़ते थे, इस प्रकार को अनेक कटुक्ति कह करके उनको धिकारते थे। और ये कटुक्ति की सुन करके, नवदीप वासियों के कटुक्ति की सुन करके नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर हंसते थे और गृह से दरवाजे से भाग जा चले जाते थे। इस प्रकार नवदीप के कि हर गृहस्थ के घर में जाते थे और शाम के समय नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचते थे और सारा दिनों का जो प्रचार का रिपोर्ट, क्या किसको भक्त बना है, किसको क्या हुआ, क्या घटना हो गई दिन के भीतर, तो सारे चैतन्य महाप्रभु आकर के बखानते थे, बताते थे। और इस प्रकार एक 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 दिन नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर ऐसे वो प्रचार करके वापस आ रहे थे, अचानक उनके नजर गया दोनों, जो कि ऐसे सुना गया है कि जो वैकुंठ के द्वारपाल सिक्योरिटी थे जय विजय, वही जो है जय विजय कलयुग में चैतन्य लीला में जगाई माधव के रूप में आए थे। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जब देखे, ये भले वो ब्राह्मण परिवार में जन्म हुए थे लेकिन कार्य था उनका चंडाल का, और जब नित्यानंद प्रभु ठान लिए, विचार कर लिए, ये दोनों का उद्धार होना चाहिए, होनी ही चाहिए। जब नित्यानंद प्रभु कोई जीव का उद्धार करना चाहते हैं, मन में विचार कर लेते हैं, तो जीव का उद्धार हो ही जाता है। जब हरिदास ठाकुर वहां पर बोले कि नित्यानंद, आप जो जीव का उद्धार करना करने के लिए मन में संकल्प ले लिए, वो जीव का तो वो उद्धार हुआ, भले वो कितने भी घृणित व्यक्ति, घिनौने व्यक्ति हो ना क्यों, जहां पर नित्यानंद विचार कर लेते हैं, जहां पर प्रभुपाद जी विचार कर लेते कि जीव का उद्धार होना चाहिए, जहां पर प्रभुपाद जी विचार कर ले कि मृतों का अवश्य उद्धार होना चाहिए, तो यही मृतों को उद्धार करके प्रभुपाद जी ने सारा संसार में ऐसे ऐसे भक्त खड़ा करा दिए। तो चैतन्य महाप्रभु के रस को अधिक अधिक, जो चैतन्य महाप्रभु का उस समय भविष्यवाणी था, पृथ्वी दे आशु जो तो नागरते ग्राम सबत्र होई प्रचार होई अमर नाम, वो समय चैतन्य महाप्रभु आवाज के ऊपर गौड़िया मठ के मिशन के जो तथा वो समय जो तथा कथित जो वो समय सन्यासी लोग थे, तो वो संदेह उत्पन्न हुआ उनके मन के भीतर, कैसे ये संभव है, ये नहीं हो सकता। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का जो भविष्यवाणी है आज प्रत्यक्ष रूप में हमें आपके सामने देख रहे हैं, किस प्रकार मृक्ष जवन आंध्र हूर्ण जंगली जैसे जीव बिताने वाले ऐसे ऐसे लोग चैतन्य महाप्रभु के रस में डूब रहे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर उनके अनुगामियों का एक अटूट प्रयास है, उत्कट उनके हृदय के भीतर चैतन्य महाप्रभु की जो भक्ति है, ये भक्ति ही चैतन्य महाप्रभु की जो भक्ति है, ये सारा संसार में उनके संदेश को प्रचार करने के लिए वर्तमान अनुगामियों को एक प्रकार धक्का दे रही है, एक प्रकार उत्साह प्रदान कर रही। चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा शक्ति है, ये कृपा शक्ति के द्वारा आज चैतन्य महाप्रभु के जो फॉलोअर्स है, अनुगामीगण वो सक्षम हो पा रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु जो विचार इस प्रकार के ले लिए तो आगे बढ़े, और उस समय कुछ धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति रोक रहे थे, नहीं जाओ कि वो लोग इतने घिनौने, इतने पापी व्यक्ति हो गए, उनके परिवार लोग ने उनको छोड़ दिए, उनको त्याग दिए, और ऐसे कोई पाप नहीं था वो दोनों के नहीं हुआ था, और उसना वो दोनों का पाप इतने, दोनों के द्वारा इतने पाप हो चुका था, तो जमराज का असिस्टेंट भी थक गया था उनका पाप का देवड़ा को लिख के, उनके पाप का घड़ा भर करके वो उबक रहा था, और चित्रगुप्त उनके पाप इतने बड़े लिख करके इतने बड़े लंबा डायरी बना दिया था, तो और लिखने के लिए जगह भी नहीं था, इतने पाप कर लिए थे। तो इसीलिए सारे जो सज्जन व्यक्ति थे वो रोक रहे थे नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी को, लेकिन नित्यानंद प्रभु ये कर दिखाना चाहते थे कि कलयुग में चाहे भले कितने भी कदर्ज व्यक्ति हो, जैसे वो चैतन्य महाप्रभु का हरिनाम प्रदत्त हरिनाम का आश्रय लेता है, उसका उद्धार होके ही रहेगा। खास करके यही बात को बता देने के लिए नित्यानंद प्रभु अपने मन में संकल्प, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जो है चैतन्य महाप्रभु का प्रकट है, और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के शरीर में विहार करते हैं,
नित्यानंद के शरीर, ये चैतन्य महाप्रभु कहना है, चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि मैं ये जो शरीर है मेरा है और नित्यानंद के शरीर में मैं रमण करता हूं, मैं विहार करता हूं। और चैतन्य का मन अभिलाषा को पूरा करने के लिए नित्यानंद का प्रकट है, हल्ला दिन शक्ति जो है, तो ये नित्यानंद और राधा रानी का प्रकट है। तो आगे बढ़े और जाकर के जब हरि राम बोलने लगे तो दोनों जो शराबी थे, नशेले थे, नशे में पड़े गिरे हुए थे जमीन में, तो उठे और ऐसे टेढ़ी नजर में देखे, हमको बोल रहा है, हमको ज्ञान देने के लिए आ गया। और उठे दोनों भाई और खेदड़ने लगे, और जैसे खेदड़े और दोनों हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु अपने प्राण बचाने के लिए भागे चले। और नित्यानंद प्रभु तो भाग जा रहे थे, लेकिन हरिदास ठाकुर जी भाग नहीं पा रहे थे। और किसी भी प्रकार शराबियों के हाथों से अपने प्राण को बचाने के लिए अपने जा रहे थे, और किसी प्रकार बच गए और जाकर के नित्यानंद प्रभु को हरिदास चैतन्य महाप्रभु को बताएं शाम को कि प्रभु काल ये अवधूत के साथ मुझे प्रचार करने के लिए भेजो मत, ये अवधूत के साथ मैं कल से नहीं जाऊंगा, आज किसी भी प्रकार में अपने नशेड़े लोगों के हाथ से मैं किसी भी प्रकार बच गया, रात मरने मेरा शरीर मेरा प्राण तो जाने वाला ही था, किसी भी प्रकार में बच गया, कल से मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। जब हरिदास ठाकुर इस प्रकार राज सुना दिया अपना, तो नित्यानंद प्रभु ठान लिए, कल मुझे ये दोनों को उद्धार करना ही है। तो ऐसे सोच के अकेले चल दिए और जा करके बोले, राम बोलो, कृष्ण बोलो, तुरंत माधाई मारा ना जी। हाँ, तो माधाई जो गिर पड़ा था शराब में पी करके, उठा अपने बोतल को ले लगाया नित्यानंद प्रभु के सर पे, और जैसे लगाया तुरंत नित्यानंद प्रभु के जो शरीर सर से खून निकलने लगा, बहने लगा। और जो और पीट रहा था वहां पर जगाई ने रोका, अरे ये अवधूत को मार के क्या हाथ गंदा कर रहे हो, खराब कर रहे हो, ये सन्यासी है, ये सन्यासी को मार के हमें क्या मिलने वाला है। तो जगाई ने रोक रहा था, ये एक संगति का प्रभाव है। हाँ, भले हमारे हृदय में कितने गंदे भावना चल रहे हैं, लेकिन संगति यदि सही है, हमारा आश्रय यदि सही है, तो फिर उधार निश्चित है। भले माधाई ने कहा कि अरे सन्यासी क्यों मार रहे हो ऐसे ना, माधाई ने मारा, लेकिन जगाई वहां पर क्या कहा कि आप इसको मई सन्यासी को मार के क्या फायदा है, मारो मत, छोड़ दो। ये संगति का असर है। तो ये बातें जब चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचा, तुरंत वहीं से बैठे हुए जगह से उठ पड़े और सुदर्शन स्मरण करते हुए, क्योंकि आज मैं थोड़ा ऐसा विचार किया कि भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती महाराज का दिशातरण अप्रकट तिथि है, और उनके अप्रकट तिथि में और सहज चैतन्य महाप्रभु का प्रकट, चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने वाले ही है, और चैतन्य महाप्रभु और उनके जो अति प्रिय भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज के, और आज के दिन में उनके विषय में जी, क्योंकि हर शुद्ध भक्त चाहता है उनके प्रभु की गुणगान हो, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ठाकुर के प्रसन्नता के लिए यदि हमें चैतन्य महाप्रभु के गुण को बखाने सुने कहें, तो निश्चित रूप से ऑटोमेटिक ऐसे ऐसे भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज का कृपा हमारे पर बरस जाएगा। तो ये नित्यानंद प्रभु जब चैतन्य महाप्रभु सुदर्शन स्मरण करते हुए जब वहां पर जाके पहुंचे, और सुदर्शन ऐसे ही आ ही गए थे, और नित्यानंद उनको रोके, रुक जाओ। और नित्यानंद प्रभु कहने से वहीं पर सुदर्शन रुक जाते हैं। और वहां पर नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि प्रभु इस संसार में प्रकट आपका इसके लिए नहीं हुआ, आपका अस्त्र क्या है, सुदर्शन नहीं, आपका अस्त्र क्या है, प्रेम, आपका अस्त्र कलयुग में प्रेम है, आप इसीलिए आप महादानी के रूप में संसार के भीतर गिने जाते हो। तो आप प्रेम के द्वारा ये कलयुग में प्रत्येक बद्ध जीव के भीतर जो असुर राज कर रहा है, असुर बैठा है, आप प्रेम रूपी अस्त्र के द्वारा ये असुर को बद्ध करो। तो सुदर्शन के द्वारा मारोगे तो सारे को सारे मार दो, फिर आपका आने का कुछ मतलब ही नहीं रहेगा। तो फिर चैतन्य महाप्रभु जब देखते हैं, और नित्यानंद प्रभु वहां पर कहते हैं कि प्रभु कृपा करके ये दोनों को आज मुझे भिक्षा दे दो, मैं भिक्षा के रूप में ये दोनों को मैं मांग रहा हूं, आज मुझे ये दोनों को भिक्षा के रूप में दे दो। और वहां पर चैतन्य महाप्रभु उनको छोड़ देते हैं, और दोनों भाई को उद्धार करते हैं, और ये भी कहते हैं आज से तुम दोनों यदि आज से जो हो गया आज से तुम दोनों यदि पाप को रोक दोगे पाप नहीं करोगे, तुम दोनों का अनेक जन्मों का जो पाप है वो सारे पापों से मुक्त करके मैं कृष्ण प्रेम प्रदान करूंगा। और इस प्रकार कहते हुए चैतन्य महाप्रभु वो दोनों को अकेले जगह में लेके जाते हैं और अपने प्रेम प्रदान करते हैं। अरे वो दोनों इतने पाप कर लिए थे, जब चैतन्य महाप्रभु दोनों को आलिंगन दिए तो उनके पाप के प्रभाव से चैतन्य महाप्रभु जो गौरव बन रहे वो काला हो गया था। ऐसे हुआ था प्रभु जी। हाँ तो ऐसे हुआ था। हाँ इसने तो ये पढ़ा नहीं लेकिन मैं ऐसे भक्तों से सुना था कि ये दोनों इतने पाप कर लिए थे तो उनके आलिंगन जैसे ही दिए महाप्रभु जैसे अपने आलिंगन दिए तो उनके पाप के द्वारा वो ऐसा थोड़ा कलर चेंज हो गया था, गौरवर्ण थोड़ा बदल गया था, ऐसा चेंज हुआ था। तो ऐसा तो क्या है मुझे इतना गहरा तो पता नहीं है लेकिन ऐसे भक्तों से सुना था। तो हर युग में भगवान प्रकट होते हैं अपने भक्तों को आनंद देकर और अधर्म को नाश करके पृथ्वी के ऊपर एक बैलेंस, एक समता, एक संतुलन बनाए रखने के लिए। तो पृथ्वी देवी जब कष्ट में होती है तो इस प्रकार भगवान हर युग में प्रकट होते हैं। और आज के ये श्लोकों से और एक बात पता चलती है, परंपरा पद्धति के द्वारा भगवत प्राप्ति का एक बहुत बड़ा प्रमुख मार्ग है परंपरा। हाँ आचार्य उपासना भगवत भक्तों का, अरे भगवान स्वयं भी ये बात को कह रहे हैं, जो सीधे मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरा भक्त का भक्त है ये मेरा भक्त है, मैं उनको भक्त के मेरे दास के रूप में गिनती में लेता हूँ। इस प्रकार भगवान स्वयं भी कहते हैं। और इस संदर्भ में शिव जी एक बार पार्वती जी को कहते हैं, आराधनम सर्वेशम विष्णु आराधना परम तस्मात परतरंग देवी तदीयानंग समर्थन। तदीय वस्तु बड़े उत्कृष्ट बड़े शक्तिशाली होते हैं, भगवान अपने भक्तों को बड़ा बना देते हैं। यदि वो भगवान राम के लिए सेतु बांधना कोई मामूली बात था फिर भी हनुमान के द्वारा वो कार्य करा करके हनुमान को जस देना चाह रहे थे। तो ये भगवान का अपने भक्तों का प्रति एक अद्भुत मिठास प्रीति है। ये प्रेम के वजह से भगवान अपने भक्तों को आगे खड़ा करना चाहते हैं। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी ये बात को कहते हैं चरितामृत में, गुरु आज्ञा है बलवान, गुरु आज्ञा न लंगे शास्त्र प्रमाण। गुरु आज्ञा इतना बलवान होती है जैसे कोई व्यक्ति उनको उल्लंघन करता है तो न लंगे शास्त्र, गुरु आज्ञा को नहीं लंघने के लिए ये शास्त्र भी हुंकार देती है। यदि वो प्रताप रुद्र के लिए चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए कोई बहुत बड़ा भारी रुकावट नहीं था, वो राजा थे मिल सकते थे, फिर भी वो सिस्टमेटिक जाना चाहते थे। वो इसीलिए वो सार्वभौम भट्टाचार्य के शरणापन्न हुए, सार्वभौम भट्टाचार्य के पास जाकर गिड़गिड़ा रहे थे, कृपा करके आप करोगे तो कुछ होगा, आप मिलाओगे तो मुझे चैतन्य महाप्रभु को मैं मिल सकता हूँ। तो राजा थे वो सीधा आकर के चैतन्य महाप्रभु मिल सकते थे, नहीं ऐसा नहीं किया। ये भगवान भगवत प्राप्ति का भगवत दर्शन का एक गुह्य मार्ग है। और आखिर में चैतन्य महाप्रभु प्रताप रुद्रदेव को दर्शन नहीं देते हैं, फिर क्या देते हैं, अपने तदीय वस्तु, अपने व्यवहारिक वस्तु देते हैं, अपने संबंधित वस्तु दे करके उनको भक्ति प्रदान, अपनी सुख प्रदान करते हैं। चैतन्य महाप्रभु दर्शन नहीं देते हैं लेकिन अपने व्यवहारिक वस्तु को, अपने संबंधित वस्तु को प्रताप रुद्रदेव को प्रदान करके अपने रस को देते हैं। क्या ये संबंधित वस्तु, अपनी चादर। जब सारे भक्तों ने आकर के चैतन्य महाप्रभु को बोल रहे थे कि प्रभु कृपा करके ये उड़ीसा के राजा गजपति राजा जगन्नाथपुरी के जो राजा आपको मिलने के लिए तड़प रहा है, बड़े ही दुखी है, तो कृपा करके आपका दर्शन दे करके आप उनको सुख प्रदान करो, नहीं चैतन्य महाप्रभु हमेशा ये अवॉइड कर देते थे, मतलब ये नकारते थे। और अनेक भक्तों के कहने से तो चैतन्य महाप्रभु अपने कंधे में जो चादर है वो चादर को प्रताप रुद्रदेव को प्रदान किए थे। और जैसे ही प्रताप रुद्रदेव चैतन्य महाप्रभु का ये उत्तरी को प्राप्त किए तो उनको ऐसे ही लगा मैं साक्षात चैतन्य महाप्रभु में आलिंगन कर रहा, साक्षात मुझे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन मिला है, साक्षात चैतन्य महाप्रभु मेरे सामने खड़े। और ये बात भी अनुभव किए थे अपने पुत्र को जब दर्शन किए, चैतन्य महाप्रभु प्रताप रुद्रदेव को दर्शन नहीं दिए थे किसको, उनके पुत्र को। जब उनके पुत्र गए तो उनको बड़े ही आलिंगन किए, प्रेम किए, और उनको बहुत ही अपने नजदीक रखे, लेकिन प्रताप रुद्रदेव को नहीं दिए थे। और प्रताप रुद्रदेव जब अपने पुत्र को आलिंगन करते थे, वो चैतन्य रस, वो चैतन्य प्रेम वो ट्रांसफर होती थी प्रताप रुद्र को। ये एक एक सूक्ष्म भगवत भक्ति, भगवत रस, भगवत प्रेम का प्राप्ति का एक सूक्ष्म बड़ी छुपी हुई बातें हैं। तो यही बात को हमें आज के श्लोकों के द्वारा भी हमें जान सकते हैं। और चैतन्य महाप्रभु के एक उत्कट भक्त हुए थे, तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु पूछ दिए भक्त को, आप बाप हो ना, वो आपका, वो आप उनका बाप हो ना, वो आपका बाप है। चैतन्य महाप्रभु पूछ दिए थे, भले कोई हमारे से उम्र से कुछ भी हो, लेकिन भक्ति में जो ऊपर है वो हमारा बाप है, पिताजी है, वो हमारा लीडर हो सकता है, वो हमारा मार्ग प्रदर्शक हो सकता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद को पूछ दिया, मुकुंद ना प्रभु जी, हाँ, तो पूछ दिए जो चैतन्य महाप्रभु के सामने बाप बेटे दोनों खड़े हो गए, तो चैतन्य महाप्रभु पूछ दिए, बेटा कौन हो, बाप कौन हो? तो उसके जवाब में मुकुंद जी कहे, सारंग ठाकुर ना, अरे सॉरी, रघुनंदन ठाकुर। तो रघुनंदन मुकुंद जी बोले, ये रघुनंदन जो है मेरा बाप है, मैं उनका बेटा हूँ। कि बाह्य सांसारिक दृष्टि में मुकुंद जो है रघुनंदन के पिताजी है, लेकिन वहां पर पिताजी खुद ही बोल रहे हैं वो मेरा बाप है, मैं उनका बेटा हूँ। तो क्यों ना, ये भक्ति का एक बड़े ही अद्भुत चमत्कार है। ये भक्ति की वजह से व्यक्ति महान बन सकता है, भक्ति के वजह से व्यक्ति जसस्वी बन सकता है। ये रामानंद राय के चैतन्य महाप्रभु के बातचीत हमें भी जानते हैं। तो ये आज के श्लोकों से थोड़ा सा हमें झलक होती है किस प्रकार भगवत प्राप्ति करना है, किस प्रकार भगवत प्रेम प्राप्त करना है। ये आज के श्री सुखदेव गोस्वामी का मुखनिस्सृत वाणी इस पर परीक्षित महाराज को बताते हैं। तो ये हमें थोड़े बहुत हमें सीखेंगे तो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति का देरी नहीं है, भगवत प्रेम का दूर नहीं है। तो और आज के यही प्रेम को और अधिक अधिक मात्रा में बढ़ाने के लिए एक आचार्य संसार में प्रकट हुए थे, एक नहीं दो दो, गौर हे जोलिनेश गौर गोविंद स्वामी महाराज और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, जो कि ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय को एकदम एक अद्भुत नया रूप प्रदान किए थे, उनका सकल को बदल दिए थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय का भगवत प्राप्ति और ये पोशाक ये उन्हीं से ही स्टार्ट हुआ था। ये जो भगवे वस्त्र सैफ्रन वस्त्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से ही शुरू हुआ था, उन्होंने हमें ये कपड़ा दिए, वर्दी प्रदान किए। और ये वर्दी प्रदान करके वर्दी देने के साथ साथ भी कृष्ण प्रेम भी प्रदान किए। लेकिन ये प्रेम को यदि हमें सही यूज न करें, व्यवहार करने का प्रोसेस न जाने, तो फिर गलती हमारे में है। आचार्य तो आते हैं तो ऐसे वो जबरदस्ती बद्ध जीवों को प्रेम प्रदान करके गोलोक ले जाने के लिए, लेकिन वो प्रेम का हमारा हृदय रूपी पात्र कितने तैयार है ये चीज को पकड़ रखने के लिए। तो आज के दिन में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जब प्रकट हुए थे, और ये जो गुरु बने उनके गुरु भी कम नहीं थे, उन्होंने भी ऐसे एक गुरु बनाए। तो उनके गुरु जी श्रील गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज, उनके भजन प्रणाली एक अद्भुत है। कभी वो मरे हुए खुपड़ी, मनुष्य का मरे हुए खुपड़ी में लेकर के पानी पीते थे, और कभी वो चिल्ली जो मिर्च और सूखा चावल को चुबाते थे, उनका आहार गंगा का जल उनका आहार था। और कभी वो स्मशान में सोते थे, उनका कार्य बड़े ही अद्भुत था। ऐसे ऐसे कार्य करते थे तो संसार को भंड ठकाते थे, भगवत भजन का एक ठगान। ये क्योंकि भगवत भजन दिखाओगे, यदि वो भगवत भजन दिखावा नहीं है, वो सिम्टम्स बता देती है, लेकिन गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज से ये बात सीखना है भगवत भजन कैसे करना है छुपके। यदि आप दिखाओगे तो फिर भगवत भजन, कुमदास प्रभु भी ये बात बताते हैं, लेकिन भक्ति दिखाओगे भगवत भजन दिखाओगे तो फिर लोग आपको भजन करने के लिए नहीं देंगे। मेरे से तो भजन हो ही नहीं रहा है, मेरे तो भजन ठीक से चल ही नहीं रहा है, इस प्रकार का ये भजन करने का एक प्रश्न श्रील गोविंद दास बाबा जी महाराज अपने प्रिय शिष्य को भी और सारा संसार को भी बताते हैं अपने आचरण के द्वारा। और ऐसे गुरु जब एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को आदेश दिए थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को आदेश देने के साथ साथ सारे भक्तों को आदेश दिए थे कि जब मेरा शरीर छूट जाएगा, हाँ, नवदीप के मिट्टी के ऊपर, धूल के ऊपर मेरा शरीर को घिसटना। और जब श्रील गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज का शरीर वो ये संसार छोड़ देते हैं, तो सारे बाबा जी महाराज वहां पर इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर के रस्सी लगा करके बाबा जी महाराज का शरीर को नवदीप के धूल के ऊपर घिसटने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक उसी समय उनके जो ये प्रिय शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज वहां पर प्रकट हो जाते हैं, वहां पर पहुंच जाते हैं और प्रकट होकर के ये कार्य से वो सारे बाबाजियों को रोक देते हैं। और रोक करके शेर का जैसे आवाज है, ऐसे आवाज दिखा करके वो कहते हैं, आवाज करके वो कहें कि किसी का भी वहां पर अवकाश नहीं है, किसी का कोई अधिकार नहीं है मेरे गुरु के ऊपर हाथ लगाने के लिए। और ये बात को, और इस प्रकार गंभीर वाणी से बोल रहे थे उस समय सारे जो इकट्ठे हुए थे बाबा जी महाराज, जो घिसटने के लिए तैयार हो गए थे, सारे रुक गए, सारे रह गए, ऐसे रह गए। हाँ, और सारे बाबा जी लोग वहां पर भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज के ऊपर उठा दिए, अपने आवाज उठा दिए, आप क्या अपने को समझ रहे हो, बाबा जी महाराज के आखिर सपना था ये, अपने जीवन में ये करने के लिए हमें कह के गए थे तो घिसट आ जाए। नवदीप चैतन्य महाप्रभु के ये पवित्र जगह के ऊपर उनके शरीर को घिसट आ जाए, तो ये भक्ति श्रील गौरकिशोरदास दास बाबा महाराज का ये हमें कहा था, तो इसलिए हमें ये उनके सपना को हमें प्रत्यक्ष करने के लिए हमें ये करना है। लेकिन भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज ही अपने गुरु महाराज का ये कहना था असल मर्म को समझ गए थे। वो तो अति विनम्र भक्त, अपने विनम्रता के कारण वो इस प्रकार कह छोड़ दिए थे, लेकिन आचार्यों का कहने का जो अर्थ है वो जो योग्य शिष्य होता है वो ही समझ पाता है। और ऐसे योग्य शिष्यों में से भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज ही समझ रखे लिए थे कि श्रील गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज के कहने के पीछे हेतु क्या है, इसलिए उन्होंने रोके। और जब नहीं सुन रहे थे तो उन्होंने कहे, आखिर फैसला सुना दिए, यदि कोई एक साल ब्रह्मचर्य व्रत पालन किए हो तो लगाओ मेरे गुरु जी के हाथ के शरीर के ऊपर हाथ। तो सारे बाबा जी वहां पर, जो सारे बाबा जी खड़े थे, सब मुंह झुके करके खड़े रहे, मौन रह गए। ठीक है, एक साल नहीं, 6 महीना ऐसे रह गए, 3 महीना ऐसे एज इट इज रह गए, 3 महीना, 1 महीना कोई आगे नहीं बढ़े, 1 दिन, 1 घंटा सब पीछे मुड़े तेज चल, सारे के सारे पीछे मुड़े और सारे बाबा जी महाराज चले गए। यदि 1 घंटा, यदि 1 दिन, यदि कोई ब्रह्मचर्य व्रत सही रूप में पालन किए हो तो लगाओ मेरे गुरु जी के प्रहार, मैं छोड़ दूंगा। ये सारे बाबा जी महाराज भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज के इस प्रकार का आवाज, उनके हृदय में जो कापुरुषता, अपने हृदय में जो कमजोरी, ये कमजोरी श्रील गौरकिशोर बाबा जी महाराज पुण्य आत्मा है पवित्र शरीर के ऊपर लगाने के लिए मतलब नहीं कर पाया। तो सारे बाबा जी महाराज वहां जगह छोड़कर जब चले गए तो भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज अपने गोद में, जिस प्रकार से महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी के शरीर को अपने गोद में लेकर के संस्कार किए थे, ठीक उसी प्रकार भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज अपने गुरु जी के पवित्र शरीर को अपने हाथ में लेकर के संस्कार किए थे। और ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज महान भागवत के देख रेख में पालित पोषित हुए थे। और भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज ये संसार में प्रकट होने के पहले उनके जो गुरु थे भक्ति विनोद ठाकुर जी, वो रोज जाकर के जगन्नाथ जी के सामने प्रार्थना करते थे कि प्रभु कृपा करके मैं ऐसे एक संतान प्रदान कीजिए तो चैतन्य रस को, चैतन्य वाणी को इस सारे संसार को बताएं। और जगन्नाथ जी उनका कहना सुने और उनके ऐसे एक पुत्र दिए तो हमें प्रत्यक्ष रूप में उनका कार्य को हमें देखें। और एक बार उनके माँ भगवती एक बार अपने बच्चे को, बालक को लेकर के जगन्नाथ जी के, और एक बार जगन्नाथ जी का रथ चल रही थी तो उनके घर के सामने ही रुक गई जगन्नाथ जी के रथ। और जब जगन्नाथ जी का रथ जब वहां पर रुक गई तो तुरंत उनके माँ जो थी भगवती वो अपने गोद में अपने बालक शिशु को लेकर के जगन्नाथ जी के सामने आए। और जैसे वो प्रणाम कर दिए तो जगन्नाथ जी को पता चला ये तो मेरा पुराने भक्त है, और अपने पुराने संबंध है उनके साथ, हाँ पहले संबंध, पहले से संबंध है, और ये संबंध को दिखाने के लिए तुरंत जगन्नाथ जी के गले में जो पहने हुए धंडा, उड़ीसा के लोग कहते धंडा, हाँ टाहिया, जगन्नाथ जी जो गले का माला पहनते हैं उनको टाहिया कहते हैं, धंडा कहते हैं। तो तुरंत जगन्नाथ जी के गले से वो जो पुष्प माला था वो टूट करके वो बालक के ऊपर गिर पड़ा। जैसे ही गिर पड़ा वहां पर जो भक्त लोग थे हरी बोल हरी बोल हरी बोल कहने लगे, हरिध्वनि करने लगे, और ये भविष्यवाणी सुनाए थे, हाँ ये जगन्नाथ जी का अपेक्षा है, जगन्नाथ जी यहाँ से वो यहाँ पर कह देना चाहते हैं आगे जाकर के ये शिशु महापुरुष बनेगा और जगन्नाथ जी का संदेश को सारा संसार में बताएगा। ये जगन्नाथ जी का पहले बचपन से ही सारा संसार के लोगों को बता दिए थे। और आगे जाकर के जब 1890 में भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने ये पुत्र को लेकर के काशी प्रयाग वाराणसी ऐसे तीर्थ कर रहे थे, तो जब काशी में पहुंचे, काशी में पहुंचे भक्ति विनोद ठाकुर अपने पुत्र को लेकर के, वहां पर राम मिश्र मिश्र शास्त्री रामानुज संप्रदाय के, तो रामानुज संप्रदाय के विषय में वो चर्चा किए थे राम मिश्र शास्त्री के साथ भक्ति सिद्धांत ठाकुर। और उसी समय से भक्ति विनोद ठाकुर जी देख लिया अपने पुत्र के भीतर कितने संसार के प्रति उत्कट वैराग्य है, वो देख लिए, हाँ। और वो मन मन में एक गुरु की खोज कर रहे थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मन मन में एक गुरु की खोज कर रहे थे, ये बात भी भक्ति विनोद ठाकुर जी जान लिए। और अपने पुत्र का वैराग्य संसार के विरुद्ध में और गुरु का शरणापन्न, ये बातें को जब भक्ति विनोद ठाकुर जी जान लिए, तुरंत आगे जी जाओ वृंदावन में एक सिद्ध बाबा है श्री गुरुकिशोर दास बाबा जी महाराज का शरणापन्न हो जाओ, और अपने पिताजी का आदेश लेकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज वृंदावन पहुंचते हैं। और वहां पर पहुंचकर श्री गुरुकिशोर दास बाबा जी महाराज को अपने आश्रय देने के लिए चरण में प्रणाम के आश्रय मांग भिक्षा करते हैं, हाँ। और वहां पर श्री गुरुकिशोर बाबा जी महाराज सीधा सुना देते हैं, हाँ कि नहीं, हाँ मुझे कोई आश्रित, मुझे कोई शिष्य बनाना नहीं है, हाँ ठीक है, हाँ आप जाइए, मैं महाप्रभु को पूछने के बाद आपको मैं बताता हूँ, हाँ। तो वो दिन जब जाते हैं तो फिर गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज कहते हैं, सुनाते हैं कि मैं महाप्रभु को बोलने के पूछने के लिए भूल गया, हाँ। तो फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज आ जाते हैं, फिर तीसरे बार जब जाते हैं तो फिर ऐसे सुना देते हैं, ऐसे पंडित विद्वान व्यक्ति को मैं मेरा आश्रय में नहीं ले सकता, इस प्रकार का सुना देते हैं गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को। तो ये सुनकर के वहां पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज श्रील गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज को बताते हैं, कौन है गोष्ठीपुण्य अष्टदश बार रामानुज आचार्य का प्रत्याखित होने के बाद भी वो रामानुज श्रील रामानुजाचार्य का शरण को नहीं छोड़े थे, ठीक उसी प्रकार आप मुझे कितने भी प्रताड़ित करो, कितने भी धिक्कारो, मैं आपका शरण शरण के अलाव व्यतीत और किधर भी मैं नहीं जा सकता। इस प्रकार दृढ़ संकल्प जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के भीतर श्री गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज लक्ष्य किए देखें, तो फिर उनको सेवाकुंज के गोद्रुम सुखदा कुंज वहां पर उनको भगवत दीक्षित कराए थे। और वो दीक्षा लेने के बाद वो समय जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अपने गुरु के स्वप्न और चैतन्य वाणी को एक नया बड़ा आकार से प्रचार करने के लिए कदम उठा रहे थे, तो देखे अरे कि यीशु क्या है। वो समय बांग्लादेश में आउल बाउल नड़ा नड़ी और क्या कर्ताभाज दरवंशी इस प्रकार सारे जो अपसंप्रदाय है वो अति प्रबल मात्रा में अपने स्वर दिखा रहे थे, हाँ इतने मात्रा में। वो समय ये सहजिया संप्रदाय सारा बांग्लादेश में चल रही थी, अपने रूप दिखा रहे थे। तो भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज सोचने लगे किस प्रकार चैतन्य वाणी को मैं इस प्रकार परिस्थिति में मैं प्रचार करूं, वो बड़े धीमे हो गए थे, बड़े ही ये हो गए थे, और देखे जब ये संप्रदाय के जो सुखत लोग है, जो नेता लोग है, जो तथाकथित सन्यासी लोग है, तो अपने रूप दिखा करके वो सारा संसार को चीटिंग कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, धर्म के नाम पर चीटिंग दे रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के भीतर जो उत्साह है वो थोड़ा सा धीमी हो गया। और वो सोचने लगे ऐसे सहजियों के सहजियों से दूर होकर मैं निर्जन स्थान में बैठकर मैं भगवान का भजन करूंगा, एकांत भजन करूंगा। जब एकांत भजन करने लगे तो तुरंत और पहले से 1926 महीना जब गौर शक्ति गदाधर, गौर शक्ति का जो गदाधर पंडित को तिरोभाव के दिन में भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने ये संसार से अप्रकट होने के पहले अपने पुत्र को आदेश दिए थे, देखो ये जो चैतन्य महाप्रभु का वाणी और जो श्रीधाम मायापुर का ये धाम का प्रचार अवश्य आप करना, और उसके साथ साथ उनका माँ का भी आदेश था, दोनों पिता माता का आदेश था भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज के प्रति, अपने पिता माता का आदेश और ये देख सामने देखिए इस प्रकार का परिस्थिति, इस प्रकार का विपरीत परिस्थिति में कैसे ये काम कार्य करूं, तो बड़े निरुत्साहित होकर के एकांत भजन में बैठ गए। जब एकांत भजन में बैठ गए थे ठीक उसी समय चैतन्य महाप्रभु उनके सामने प्रकट हुए और सड़ गोस्वामी वो आचार्य लोग प्रकट हुए, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जी के आदेश था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के प्रति, तो देखना ये करना जो सड़ गोस्वामी प्रभु के सड़ गोस्वामी प्रभुओं के ग्रंथ को अवश्य प्रचार करना और चैतन्य महाप्रभु का वाणी को अवश्य प्रचार करना, ये भक्ति विनोद ठाकुर जी के आदेश था उनके प्रति। मैं कैसे सड़ गोस्वामी का ग्रंथ को मैं कैसे प्रचार करूंगा, इस प्रकार निरुत्साहित होकर के जो बैठ गए थे, तो वो समय वो सड़ गोस्वामी प्रभु आचार्यगण और चैतन्य महाप्रभु उनके सामने प्रकट होकर के उनको उत्साह प्रदान किए थे। जब ये दर्शन मिला तो फिर उनके भीतर शक्ति उत्पन्न हुआ और बड़े ही शेर के जैसे तो फिर चैतन्य वाणी को प्रचार करने लगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का अनेक अनेक उनके जीवन के अद्भुत भक्ति गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज को मिलने के बाद किस प्रकार उनके साथ और अपने गुरु के चरित्र किस प्रकार ये एक उपदेशामृत करके एक है बंगला में एक उपदेशामृत करके एक बुक किताब है, वो किताब में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज श्रील गौरकिशोर बाबा जी महाराज का चरित्र को ला करके रख ही दिए और अपने चरित्र को भी श्री गौरकिशोर दास बाबा जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का चरित्र किस प्रकार का था ये भी श्री गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज वहां पर भी थोड़े थोड़े बताए। तो ये आज के दिन में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के ये आज पवित्र तिथि में तो हमें कृपा मांग सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। तो किस प्रकार हमें चैतन्य प्रेम का हकदार बने, किस प्रकार चैतन्य प्रेम महाप्रभु के प्रेम को प्राप्त करके हमें स्वधाम प्रत्यावर्तन करें, ये आज थोड़ा सा हाथ बढ़ा देना चाहिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की ओर। यदि हम हाथ बढ़ाएंगे तो हाथ पकड़ लेंगे। और आज के दिन में और एक महान आचार्य प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्य श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज जो कि स्वधाम श्रीधाम मायापुर धाम व्यासासन में बैठे बैठे और श्रीमद् भागवतम का रस को श्रीमद् भागवतम का प्रेम पुमार्थ धन को देते हुए आखिर समय तक ये आचार्य का बड़े खोबी होती है। आखिर समय तक वो बद्ध छोड़ते नहीं है, बद्ध जी उनसे दूर जाना चाहता है, लेकिन बद्ध जी वो भक्तों का एक बहुत बड़ा गुण है, बद्ध जी वो उनसे दूर जाना चाहता है, लेकिन भक्त तो बद्ध जी को छोड़ना नहीं चाहता। ये बद्ध जी वो भक्तों के भीतर एक टकराहट होती है, ठीक वही चीज को एक साक्षात रूप देते हुए गौरकिशोर दास गौर गोविंद स्वामी गौर गोविंद स्वामी महाराज मायापुर धाम में व्यासासन में बैठे बैठे गौर रस को देते देते वो व्यासासन में शरीर छोड़ देते हैं, अप्रकट हो जाते हैं। और प्रभुपाद अनेक अनेक तथाकथित धार्मिक व्यक्तियों के मिलने के बाद आखिर में वृंदावन धाम में जब गौर गोविंद स्वामी महाराज को दैवी योग से भगवान कृष्ण की कृपा से श्रील प्रभु प्रभुपाद जी के साथ साक्षात्कार होती है, भेंट होती है, तो प्रभुपाद जी देखते ही गौर गोविंद स्वामी महाराज के भीतर जो अद्भुत गौर शक्ति छुपी हुई है, गौर गोविंद स्वामी महाराज के भीतर जो अद्भुत कृष्ण प्रेम धन पड़ी हुई है, बाकी है मेरे पर्स से ये मणि ये धन को वो सारे संसार को बांटने का माध्यम बना है। जैसे ही दर्शन किए प्रभु श्रील प्रभुपाद गौर गोविंद स्वामी महाराज को वो तुरंत जान लिए, तुरंत ही उनको अनुभूति अनुभव हुआ कि उनके द्वारा मुझे बहुत बड़ा कार्य करना है, और उनको ये कार्य और थोड़े ही समय में उनको हरिनाम और थोड़े ही समय के भीतर उनको संन्यास प्रदान करते हैं। और बहुत सारे शिष्यों का कंप्लेन होती है कि प्रभुपाद इतने कम समय के भीतर उनको हरिनाम और संन्यास, हाँ तो प्रभुपाद जी बोले कि मुझे मालूम है, मुझे पता है कि उनको मुझे मुझे कैसे अधिकार प्रदान करना है, उनके भीतर कितना शक्ति है, मुझे मुझे मालूम है, चिंता नहीं करो। और ये शक्ति को प्रभुपाद जी का गौर शक्ति को हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज प्रत्यक्ष रूप में उनके जो उड़ीसा धाम में जहाँ पर ऐसे एक जहाँ पर मर्डर होती थी, डेड बॉडी को फेंका दिया जाता था, जंगली जानवर का अड्डा था, शेर सांप भल्लू ऐसे एक बहुत बड़ा विराट घना जंगल था, ऐसे जंगल में भेज दिए श्रील प्रभुपाद ने गौर गोविंद स्वामी महाराज को। ऐसे तो बहुत ही जगह जगह बहुत बड़ा घना जंगल है, अरे जंगल के भीतर हम भटक रहे, मार्ग मिल ही नहीं रहा है, और ऐसे जंगल से हमें पार करने के लिए श्रील प्रभुपाद उनके शिष्य लोग आकर के हमें उठाते हैं, चलो ये जंगल को छोड़ो। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद ने चुने थे गौर गोविंद स्वामी महाराज को, अरे ऐसे जगह में भेजे जहाँ पर वहां पर पहुंचने के बाद गौर गोविंद स्वामी महाराज देखते ही रह गए, ऐसे जंगल के भीतर मैं कृष्ण यहाँ पर कैसे खड़ा करूं। और गौर गोविंद स्वामी महाराज आखिर में प्रभुपाद जी को शक्ति लेकर गौर शक्ति लेकर वहां पर ऐसे एक भगवत धाम बनाए, ऐसे एक भगवत धाम बनाए जहाँ पर आज हजारों संख्या में भक्त आकर के कृष्ण के लिए रोते हैं। और गुरुजी जोलीनेश गौर गोविंद स्वामी महाराज ये भी बताए थे मैं ऐसे एक स्कूल खुला हूँ, वहां पर लोग आकर कृष्ण के लिए रोते हैं, मैं एक क्राइंग स्कूल खुला हूँ वहां पर, यहाँ पर आकर के लोग कृष्ण के लिए रोए। और गौर गोविंद स्वामी महाराज अपने अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ये जंगल को भगवत धाम वैकुंठ का रूप देते हैं। और ऐसे एक पहले शुरुआत के समय ही जोलीनेश गौर गोविंद स्वामी महाराज एक झुपड़ी सा बना करके वहां पर रहते थे, आज जब उड़ते थे झुपड़ी के बाहर आते थे सांपों का एकदम अड्डा उनके उनने कुटिया के आजू बाजू में खाली सांप ही सांप है, और बहुत खतरनाक सांप, बहुत भयंकर, ऐसे ऐसे सांपों के साथ रह करके हरि भजन किए, वो सांपों के बीच में रह करके वो कृष्ण को बुलाए, आ जाओ यहाँ पर कुछ करो। और ऐसे के शुद्ध आचार्यों की बुलाओ से वहां पर भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और क्या डिटी है कृष्ण बलराम गौर निताय आज भुवनेश्वर के नयापल्ली में आज विराजमान है। हम जब जाते हैं ही जोली ने गौर गोविंद स्वामी महाराज का आध्यात्मिक शक्ति वो जगह में कोने कोने में निखर रहा है, गौर गोविंद स्वामी महाराज को शुद्ध भक्ति है वो जगह में पहुंचने के बाद हमें अनुभव हो रही है। ये एक शुद्ध भक्तों का शुद्ध आचार्यों का ये एक चमत्कार है। आज के दिन में यदि प्रभुपाद जी की साथ ही होली ने गौर गोविंद स्वामी महाराज के अद्भुत गौर गोविंद स्वामी महाराज का प्रभुपाद जी के साथ एक अनोखा एक ऐसे एक रिश्ता ऐसे एक और शिष्यों में से ऐसे एक संबंध था तो अलग से छुपे छुपे प्रभुपाद जी और गौर गोविंद स्वामी महाराज एक कौन सा आध्यात्मिक देन लेन वार्तालाप कर रहे थे वो दोनों ही जाने, ये दोनों ही और कोई नहीं जान सकते। तो आज एक महान तिथि में ऐसे आचार्यों के हमें चरण कमल में गिड़गिड़ाएंगे, कर दो कुछ दे दो कुछ, ऐसे यदि हमें आज रोएंगे इस प्रकार हृदय को कमजोर बनाकर ऐसे ऐसे रोते हुए हृदय में जाकर के यदि भीख मांगेंगे तो कुछ हमें आशा दिखती है भगवत धाम की ओर बढ़ने का हिम्मत हमारे हृदय में उत्पन्न होती है। तो ऐसे दिन में हमें ऐसे आचार्यों के प्रार्थना करेंगे तो कृपा करो आप करोगे तो कुछ होने वाला है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम श्री प्रभुपाद की भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की गौर गोविंद स्वामी महाराज की निताई गौर प्रेमानंदे।
Thank you.
साइड करो।